मुनिवर श्री क्षमा सागर जी गुरु के चरणों में सत सत वंदन सत सत वंदन हम सब शिष्य आते हैं।
भवबीजाङ्कुरुजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर कुछ बातें सीखना चाहते हैं और शायद इसीलिए हम सब लोग यहां एक साथ बैठे हुए हैं। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि हम सबके भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने की एक ललक एक आकांक्षा पिछले दिनों उत्पन्न हो गई है और शेष जीवन हमें अब इस एक ही कार्य में व्यतीत करना है कि कल जिस तरह से मैंने अपने जीवन को जिया था आज मैं उससे भी बेहतर ढंग से कैसे जी सकता हूं। हम अपने जीवन में थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं, लेकिन उन दुखों को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमें भीतर ये लगता है कि जिस तरह मैं जीवन जी रहा हूं मैं उसमें थोड़े से परिवर्तन करके और इसी जीवन में मैं सुख पा लूंगा, जबकि हमारे अपने जीवन का वर्षों का अनुभव है कि जिन क्रियाओं को हम दोहरा रहे हैं संसार की सुबह से लेकर के शाम तक उनमें हमें सिवाय दुख के आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी हम उन क्रियाओं से विमुख नहीं हो पाते हैं क्योंकि कहीं भीतर कोई एक आशा बनी हुई है कि शायद सुख मिलेगा, अभी और यहां नहीं मिला तो कभी और कहीं तो मिलेगा। बाहर से जरूर हम कोई हमसे पूछे कि संसार में क्या पाया तो हम कहेंगे कि हमने संसार में सिवाय दुख के और कुछ नहीं पाया, जो थोड़ा बहुत सुख मिला वो भी बहुत क्षणिक था पर वो तो ऐसे व्यतीत हो गया कि पता ही नहीं लगा, पर दुख और दुख के क्षण भुलाए नहीं भूलते। इतना हम दूसरे से कहेंगे जरूर लेकिन उस दुख को हम स्वीकार नहीं कर पाते अपने भीतर। दुख की स्वीकृति की कसौटी क्या है? जिस चीज में व्यक्ति को दुख मालूम पड़ता है और वास्तव में वो उसको स्वीकार कर ले तो फिर उससे विमुख उसी क्षण हो जाता है। हाथ में अगर कोई गर्म चीज आ जाए तो ना किसी से ये पूछना पड़ता है कि मैं इसे कहां छोड़ूं, किस डेट में इसे छोड़ूं और मुझे छोड़ना चाहिए कि नहीं, इस पे मुझे एक्सपर्ट की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी कि मुझे छोड़ना चाहिए कि नहीं। ऐसा हम कभी नहीं करते, लेकिन हाथ में गर्म चीज आते ही हमारे हाथ से छूट जाती है। ये उस गर्म चीज की स्वीकृति की प्रतिक्रिया है हमारे जीवन में। जैसे ही हमारे जीवन में वो चीज हमें अहितकारी जान पड़ती है, अगर सचमुच हमने उसे अहितकारी मान लिया है, अनुभव कर लिया है, तो विद इन मूवमेंट उसी क्षण उसे हमसे विमुख हो जाना चाहिएगा, लेकिन होता नहीं है। इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आशा उसमें लगी हुई है कि शायद ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा मकान है, उसमें मुझे सुख नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब तो मिलेगा, मिलेगा इसी मकान में मिलेगा। ये जो मैंने अपने अम्यूजमेंट के जो साधन जुटा रखे हैं, मनोरंजन के जो भी साधन जुटा रहे हैं, इनमें अभी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा, इसी में मिलेगा। ये जो मेरी अपनी एक भ्रामक धारणा है हम सबके साथ, वो हमें उस दुख की अनुभूति होने के बाद भी भीतर तक स्वीकृति करने में बाधक बनता है। हम अगर दुख को स्वीकार कर लें तो उस दुख से बचने का हम आसानी से उपाय कर सकते हैं। एक नाव में और कुछ बच्चे नवयुवक और नौका विहार करने के लिए निकले। मल्लाह को उन्होंने मना कर दिया कि हम तो स्वयं ही बोटिंग कर लेंगे, हम में से चलाना जानते हैं। और शाम के धुंधलके में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। रात गहराती गई और वे खान पान और उसमें लगे रहे, नाव में बैठे। कुछ लोग चप्पू चलाते रहे, सारी रात चप्पू चले, पतवार नाव खेती रही और खाने पीने में उनका नशा बढ़ता चला गया। वे भूल गए कि जरा देख तो लें कि हम कहां तक पहुंच गए हैं। और सुबह जब थोड़ा सा होश में आए तब देखा कि नाव तो वहीं खड़ी हुई है और सारी रात चप्पू चलाते रहे हम। आखिर बात क्या हुई? अब तक तो बहुत लंबी यात्रा हो जानी थी, दूसरे किनारे तक पहुंच जाना चाहिए था। नाविक ने अपनी नाव वापस लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई, आखिर बात क्या हुई? तो देखा उन्होंने किनारे से बंधी हुई नाव की रस्सी ही नहीं छोड़ी थी और यात्रा शुरू कर दी थी। कहीं ऐसा नहीं तो नहीं कि हम लोग इस संसार में सुख पाना चाहते हैं लेकिन उन्हीं दुखों से बंधे हुए रहते हैं जो आज तक हमें संसार में मिले हुए हैं। हम उन जिन चीजों में से हमें दुख मिलता है उनको छोड़ना पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए। क्या ऐसे ही हमारी स्थिति तो नहीं है? अगर ऐसी स्थिति है तो हमें थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए और बहुत स्पष्ट सा विचार करना चाहिए कि यदि मेरे जीवन में दुख है तो मैं उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर पाता हूं। एक बार मैं उन्हें ठीक ढंग से स्वीकार कर लूं, जिन जिन चीजों से मुझे दुख मिलता है उन चीजों को क्यों नहीं मैं अपने जीवन से विदा दे देता हूं। और दूसरी चीज, अगर मेरे जीवन में दुख है तो कोई ना कोई वजह होगी, बिना वजह के कोई चीज नहीं होती, कॉज एंड इफेक्ट। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। अगर मेरे जीवन में दुख आया है तो फिर उसका कोई कारण है। आज तक हमने क्या किया है? अपने जीवन में दुख आए हैं तो हमने उनका कारण कहां ढूंढा है? बाहर ढूंढा है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस थी इसलिए मुझे दुख मिला, ये जो मेरे आसपास लोग थे वो बहुत फेवरेबल नहीं थे इसलिए मुझे दुख मिला, या कि और कोई बहुत सारी चीजें हैं, आर्थिक रूप से मैं अभावग्रस्त हूं इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। ऐसे कारण तो हमने अपने जीवन में बहुत बार खोजे हैं, लेकिन वास्तव में दुख का सिर्फ कोई बाहरी कारण ही हो ऐसा नहीं है। मेरे अपने अंतरंग में मेरे जो संस्कार हैं वे भी तो मुझे दुख देते हैं, वे भी तो मुझे पीड़ा देते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बाह्य जगत में जो हम दुख का कारण ढूंढते हैं वो अपने भीतर ही ढूंढना शुरू कर देंगे। और एक बार अगर ये मालूम पड़ जाए कि दुख का कारण या कि सुख का कारण मेरे अपने ही भीतर है, मेरे अपने विचार दशा में है, मेरी अपनी भाव दशा में है, अगर ये चीज हमें क्लियर हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि हम फिर उन दुख के कारणों से बचना शुरू करें। तो दूसरी सच्चाई जीवन में है कि अगर दुख है तो उस दुख का कारण है, जब दुख का कारण है तो फिर दुख से बचने का उपाय भी होगा। और एक अत्यंत सुख की अवस्था भी होगी। बस इतनी ही बातें अगर अपने जीवन में हम समझ लेवे तो कोई वजह नहीं है कि हम दुख से मुक्त होकर और अपने उस आत्म सुख को, उस सच्चाई को हासिल कर सकते हैं। सुख के उपाय कौन से हैं या कि दुख से बचने के उपाय कौन से हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। चाहे हम ये कहें कि दुख से बचने का उपाय क्या है या कि ये कहें कि सुख पाने का उपाय क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। वो छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर हम देखें तो अपना सोच अगर हम बदल लें तो फिर पहला उपाय है कि हम दुख से बच सकते हैं। बहुत सारे दुख हमारे अपने सोच की वजह से हैं। भविष्य में, अभी वर्तमान में तो मुझे सुख सुविधाएं हैं, भविष्य में पता नहीं मेरे जीवन में कौन सा दुख आ जाएगा। ये एक अनावश्यक सोच है, लेकिन वह भी हमारे दुख में कारण बनता है। और इतना ही नहीं, हमारा अपना सोच अगर नेगेटिव है तब फिर मानिएगा हमें भगवान भी आकर के यहाँ कोई सुख नहीं दिला पाएंगे। सुख हमारे सोच पर निर्भर है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव सोच का, वो बहुत छोटा सा है। एक बगीचे में और अगर एक भौंरा जाए और एक मक्खी जाए तो देखिएगा मजा। वो भौंरा जाता है तो उस बगीचे में फूलों के ऊपर बैठता है और उनसे पराग लेकर के गुनगुनाता हुआ लौट जाता है। और मक्खी महारानी अगर पहुंचती हैं तो उस बगीचे में उनको फूलों उलों से कोई मतलब नहीं है, जितनी सड़ी गली कचरा वाली चीज जली हुई है वो वहीं जाके बैठती हैं। बगीचे में दोनों प्रकार की चीजें हैं। आप क्या चुनना चाहेंगे ये आपके अपने सोच पर निर्भर करता है। यहां इस संसार में हम सुख और दुख में से क्या चुनते हैं ये हमारे अपने सोच पर निर्भर है। इतना ही नहीं, अगर हमारा सोच नेगेटिव है तो हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं वे भी विदा ले लेंगे और अनावश्यक दुख हमारे जीवन में सम्मिलित हो। क्या हुआ, एक गांव में और एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहा करता था और दुख का कारण भी समझ में आता था, बहुत स्पष्ट कारण समझ में आता था दुख का कि अब किसान है तो किसान को तो कभी ज्यादा पानी गिर गया तो फसल खराब हो गई, या कि कमती पानी गिरा तो भी बहुत मुश्किल है, और कभी कभी कोई कीड़ा लग गया तो फसल खराब हो जाती थी। हर साल कुछ ना कुछ होता था। मेरी आवाज तो आप तक आ रही होगी ना। हाँ, तो ऐसी स्थिति में उसका दुखी होना वाजिब मालूम पड़ता था कि ठीक तो है, इसके जीवन में कोई ना कोई दुख का कारण दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ना ज्यादा पानी गिरा और ना कम पानी गिरा, जितना गिरना चाहिए उतना गिरा, कोई कीड़ा वीड़ा भी नहीं लगा। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने देखा कि वो उदास है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पहुंचे उसके पास और उससे कहा कि भाई अब तो खलिहान में फसल अच्छी आई है और बहुत अनाज तुम्हारे खलिहान में आया हुआ है, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, दुख का कोई कारण समझ में नहीं आता। तो मालूम उसने क्या कहा कि सारा कुछ अच्छा हो गया, कुछ भी खराब नहीं हुआ, जरा भी दाना सड़ा हुआ नहीं है। अब आप ही बताओ ऐसी स्थिति में जानवरों को क्या खिलावे, थोड़ा बहुत सड़ा होता तो उनके काम आ जाता। अब ऐसे दृष्टिकोण वाले को कोई सुखी कर सकता है? ये बहुत स्पष्ट सी चीज है। कहीं हम अपने भीतर झांक के देखें कि हमारा भी चीजों को लेकर के ऐसा ही एटीट्यूड तो नहीं है, ऐसे ही अप्रोच तो नहीं है हमारा भी। ये नेगेटिव अप्रोच है, इसको हमें बदलना चाहिए। अगर हम सुख का उपाय ढूंढना चाहते हैं, अगर हम दुख से बचने का उपाय ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे अपने सोच को हम बदलें। दूसरी चीज अनाशक्ति, ये उपाय है। और तीसरी चीज आत्मविश्वास। अगर हम इस संसार में और वास्तव में जो शाश्वत सुख है उसको हासिल करना चाहते हैं, इस संसार के दुखों से बचना चाहते हैं, तब हमें जहां जहां से हमें दुख मिला है उन चीजों से विमुख होना पड़ेगा, उनसे अनाशक्त होना पड़ेगा। चीजों का उपयोग करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन उनमें इंडल्स हो जाना, उनमें आशक्त हो जाना, और मजा यह है कि जिन चीजों में हम जितने आशक्त हो जाते हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते। अच्छा देखो, जो अपन बहुत बढ़िया नए कपड़े बनवाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपन को बहुत अच्छे लगते हैं तो उनका उपयोग नहीं करते, अपन रखे रहते हैं। कोई विशेष फंक्शन आएगा तो उस दिन पहनेंगे, और पहनेंगे भी तो ऐसे पहनेंगे कि अपन को भले ही धक्का लग जाए लेकिन कपड़े को ना लगे धक्का, ऐसे पहनते। ये इससे क्या मालूम पड़ता है कि हम उसका उपयोग ठीक ठीक कर पा रहे हैं? नहीं, हमारी आसक्ति उसका उपयोग नहीं करने देती हमारे लिए, और उससे मिलने वाला सुख भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत बहुत सीधी सी चीज है कि हम यहां पर जो भी हमें साधन मिले हैं उनको अनाशक्त होकर के उनका उपयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनाशक्त हो जाएं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के और जंगल में चले जाएं, तब भी वहां आसक्ति बनी रह सकती है भैया। और यदि हम सबके बीच रह करके भी और अनाशक्त होकर के और अपने जीवन को जिए तो हमारे जीवन में वह जो अनाशक्ति का और निराकुलता का सुख है वो आज भी प्राप्त हो सकता है। आसक्ति कैसी चीज है, मैं एक उदाहरण हमेशा सुनाया करता हूं। क्या हुआ कि किसी को सुख और शांति की खोज थी और बहुत रईस आदमी था, उसके मन में बहुत विचार आता था कई बार कि जिंदगी निकल गई और मैं मिस कर रहा हूं सुख और शांति को, मुझे उसकी खोज करनी थी। वो निकला सुख शांति की खोज में और उसने सोचा कि थोड़ा बहुत अब सारा तो नहीं रखा जा सकता तो थोड़ा तो पास में रख लें, तो जितने कीमती कीमती हीरे जवाहरात थे वो उसने एक पोटली में रखे और चला। गांव गांव में पहुंचता था, लोगों से पूछता था कि आपको कहीं शांति मिली, आपको कहीं सुख मिला? तो लोग कहते भाई हमने तो कहीं शांति नहीं देखी यहां पर, आप किसी आगे के गांव में जाएं वहां पूछे, शायद वहां शांति हो, वहां सुख हो। तो वो ऐसे कई गांवों में घूमा और कोई उससे नहीं बता पाता था कि सुख कहां है और शांति कहां है। कुछ लोगों ने एक बार उससे कहा कि हमारे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी आकर के बैठे हैं, दो तीन दिन हो गए, उनके पास आसपास जाने से लगता है कि यहां शांति है यहां सुख है। संभव है कि उनको मालूम हो कि ये शांति नाम की चीज कहां है, ये सुख नाम की चीज कहां है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। तो वो गए सेठ जी वहां पर और चबूतरे पे बैठे थे बाबा जी पेड़ के नीचे। बाबा जी से पूछा कि आपने कहीं सुख देखा, आपने कहीं शांति मिली आपको? बाबा जी दो मिनट तो चुप रहे और फिर पता नहीं क्या उनके मन में आया और सेठ जी की पोटली लेकर के भागे। अब तो सेठ जी दंग रह गए कि हम तो इनको बाबा जी समझ रहे थे और हम सोच रहे थे कि ये शांति बताएंगे कि शांति कहां पर है, और ये तो हमारी पोटली लेकर के भागे। अब सेठ जी पीछे पीछे भागे और बाबा जी आगे आगे, और सारे गांव में गलियों में से इसमें से निकले उसमें से गए, उसमें से निकले उसमें गए, सारी जनता पीछे पीछे, बाबा जी आगे फिर सेठ जी उनके पीछे और जनता। और बाबा जी ने पूरा दो तीन किलोमीटर गांव का चक्कर लगाया और पोटली हाथ में लिए हांफे हांफते और फिर पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। सेठ जी भी आए और अपनी पोटली ज्यों की त्यों ले ली और कहा बाबा जी इतना नाहक आपने मुझे अशांत किया, इतना परेशान किया, हम तो आपसे शांति और सुख का उपाय पूछ रहे थे और आपने हमारे जीवन में उपद्रव खड़ा कर दिया। बाबा जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कोई अशांति नहीं दी, मैंने तो कोई तुम्हें दुख नहीं दिया, मैंने कौन सा दुख और कौन सी अशांति दी? दुख और अशांति का कारण तो तुम्हारे ही पास है, तुम उसे लिए घूम रहे हो, उसकी वजह से है, मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं। बड़ी स्पष्ट सी चीज थी वो पोटली जो हीरों से भरी हुई है, उसके प्रति जो आसक्ति है वो सेठ को दुख और पीड़ा और अशांति दे रही है या कि कोई और दे रहा है? हमारे अपने जीवन में भी ऐसा ही है, लेकिन ये इतनी छोटी सी बात एकदम समझ में नहीं आएगी। कई जिंदगियां लग जाती हैं अनाशक्त होकर के चीजों का उपयोग करने की जो एक प्रक्रिया है वो अगर हमारे जीवन में, कहते सुनते जरूर हैं अपन की जलते भिन्न कमल है, जन से भिन्न कमल के समान अलिप्त होकर के रहना। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे देते हैं कि 96,000 रानियों के बीच अपार वैभव के बीच वे अलिप्त रहे, कैसे अलिप्त रहे होंगे, शायद यही उनका अपना अनाशक्त भाव रहा होगा। क्या ऐसा हमारे अपने घर गृहस्थी में, यहाँ तो छोटी थोड़ी सी चीजों में हम इतने आशक्त हो जाते हैं कि उन चीजों के सद्भाव में अपने जीवन को बहुत अच्छा मानते हैं और उनके अभाव में अपना जीवन नष्ट हुए के समान मानते हैं। भैया थोड़ा सा अगर हम इस चीज को बदल लें तो संभव है कि हमारे जीवन में और जो वास्तविक सुख है उसकी थोड़ी सी झलक आए। और तीसरी चीज आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर हमारे मन में है तब भी हमें इस संसार में सुख का उपाय प्राप्त हो सकता है या कि दुख से बचने का उपाय प्राप्त हो सकता है। आत्मविश्वास किसे कहेंगे आप? अपने आप पर विश्वास होना। मैं इस संसार में अगर दुख पा रहा हूं तो उसका कारण भी मेरे भीतर है, इस संसार में मैं सुख भी पा सकता हूं अगर मैं उपाय करूं तो। वरना हम लोग अपने आप को बहुत दीनहीन और असहाय सा मान लेते हैं कि हमारे जीवन में तो हमेशा हमने बचपन से देखा दुख ही दुख मिला है, हमको तो सुख मिल ही नहीं सकता। ऐसे हारे हुए लोग शायद हम हैं और इसी वजह से हमने एक बार अब इस संसार में अपनी हार मान ली है कि यहां तो दुख ही है और मुझे कहीं सुख मिल ही नहीं सकता। हम एक बार अगर अपने आत्मविश्वास और फिर अगर उनमें कोई चीज कम हो रही है और हम किसी चीज को उनमें बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं हम उनके भीतर इस बात को पैदा करते हैं कि वे अच्छे बन सकते हैं, वे आत्मविश्वास पूर्वक अपने रास्ते पर आगे बढ़े, वे सफलता हासिल करेंगे। दो रोटी कमाने वाली विद्या दुनिया सिखा रही है लेकिन आत्मसंतोष और आत्म सुख प्राप्त करने वाली विद्या भी उनके पास है। वे उसके साथ साथ बाह्य सफलता हासिल करें लेकिन अंतरंग में उस सफलता का आनंद आत्मसंतोष और आत्म तृप्ति में ही है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बिना सारी उपलब्धियां हमारे लिए व्यर्थ हो जाती हैं। मैं कई बच्चों से मिला हूं और जिन्होंने बहुत बहुत ऊंचाई पाली और उसके बाद भी वे कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी मेरे जीवन में अभी भी संतोष नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। हमने बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ी और बहुत अच्छी पोस्ट भी हमने गेन करी और हमारी अपनी बहुत वेल इक्विप्ड फैमिली है लेकिन इसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? वो हमारी अपनी कमी है। हमने उन्हें संस्कारों के साथ साथ आत्मविश्वास का संस्कार नहीं दिया है। हमने बाकी सब कुछ दिया, अपने जीवन में भी हमने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाया। अगर हम एक बार अपने उस आत्मविश्वास को जागृत कर लें कि हाँ मैंने जो पाया है उसका मैं आनंद लूं, मुझे जो और पाना शेष है उसके लिए अफर्ट करूं, उसके लिए वरीड होने की, उसके लिए चिंतित होने की और दुखी होने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैंने इस संसार में बहुत सारी चीजें अपने आत्मबल पर हासिल की हैं तो आगे भी मैं कर लूंगा और जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें मैं संतोष रखू। मुझे और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जितना प्राप्त है उसमें संतुष्ट होकर के बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के, नहीं तो आज के समय में बच्चे लोग ये क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं कि फिर हमारी प्रगति ही रुक जाएगी। नहीं, हमें ज्यादा तो हासिल करना है लेकिन जितना प्राप्त है उसका आनंद भी तो लेना है और फिर ज्यादा प्राप्त करने के लिए हमें एफर्ट करना है। अपने आत्मविश्वास के साथ में हम अगर एफर्ट करेंगे तो हमें वो चीज भी प्राप्त होगी। सबके जीवन में भी यही है, चाहे वो सांसारिक सफलता हो चाहे वो आध्यात्मिक और पारमार्थिक सफलता हो, दोनों में ही आत्मविश्वास के बिना कोई काम नहीं बनता। एक छोटी सी घटना है, शायद समझ में आए कि कैसे आत्मविश्वास से हम जीत जाते हैं और कैसे आत्मविश्वास नहीं होने पर हम हार जाते हैं। घटना तो बहुत पुरानी है, राजा महाराजाओं के समय की है। कोई एक राजा हुआ करते थे और उनके पड़ोसी देश ने उन पर आक्रमण कर दिया तो सेनापति ने भी विड्रॉ कर लिया। राजा से जाके कहा कि इतनी बड़ी सेना आक्रमण करने के लिए आ रही है और हमारे पास तो 150 सैनिक हैं, हम अपना सेनापति पद छोड़ते हैं, आप जाने हमारे वश का नहीं है, या तो फिर आप और सैनिक हमें दें, इतने थोड़े से सैनिकों को लेकर के हम तो जीत सकते ही नहीं है और हार हमारी निश्चित है। जब राजा ने सेनापति के मुंह से ये बात सुनी तब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर सेना का नायक ही हार जाएगा, पहले ही से हार मान लेगा, तब तो फिर जीतना बहुत मुश्किल है। सेनापति और कोई नहीं है, हमारे भीतर बैठी हुई हमारी चेतना है वो संसार के राग द्वेष को देख करके और उसे जीतने के लिए कोई उपाय नहीं करती, बल्कि ये कह करके कि हम तो इस राग द्वेष को जीत ही नहीं सकते, इस संसार से हम पार हो ही नहीं सकते, हार मान के बैठ जाती है। अब क्या करें, कौन उसे प्रमोट करे, कौन उसे एनकरेज करे, उसके लिए जरूरी है किसी आत्मविश्वास से संपन्न व्यक्ति के पास पहुंचना। और राजा के दिमाग में उसी समय यह चीज आई कि कैसे सेनापति का आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, और स्वयं भी उसको सेनापति को हारा देख करके थोड़ी सी मुश्किल तो हुई थी। उस समय उसे याद आया कि मेरा एक बचपन में मित्र हुआ करता था, सुनते हैं कि वो साधु हो गया, शायद उसके पास कोई इस चीज का उपाय होगा। और वो उसे खोजता है और उस साधु के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम्हें याद है मैं तुम्हारा मित्र, तुम साधु हो गए थे, मैं राजा बन गया था, आज मुझे एक मुश्किल आके खड़ी हुई है, पड़ोसी राष्ट्र ने मेरे ऊपर आक्रमण किया है, सेनापति ने हार पहले से मान ली है, ऐसी स्थिति में बताइएगा कि मैं क्या करूं। तो मालूम उस साधु ने क्या कहा, तो ऐसा करो मुझे सेनापति बना दो, मैं बन जाता हूं तुम्हारा सेनापति। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको राजा को कि तुमने कभी तलवार उठाई नहीं, तुम कभी लड़ने गए नहीं युद्ध के मैदान में, और तुम स्वयं बाबा जी बने बैठे हो और कह रहे हो कि सेनापति। देखो भाई ऐसे बहुत सीरियस केस में, और तुम थोड़ा हल्का मत लो इसको, मजाक मत करो, बचपन में तो तुम स्कूल के दिनों में तो ऐसी मजाक करते थे, पर इन दिनों भी तो मत करो। तो उस बाबा जी ने कहा कि सुनो, वो जो मित्र था उसने कहा सुनो ऐसा नहीं है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सेनापति बनकर के सेनाओं को लेकर के लड़ने जा सकता हूं, और तुम इस पर फिर से विचार कर लो। अब राजा बहुत सोच में पड़ गया, उसने कहा कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे आपकी बात मंजूर है, तो चलो। वो मित्र जो कि साधु था वो यहां आता है राजा के देश में, और सेनाओं के सामने खड़े होकर कहता है कि राजा की तरफ से मैं सेनापति बनाया गया हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीत करके लौटूंगा, तुम सब अगर मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो, और नहीं आना चाहो तो मैं तो एक अकेला भी उतनी बड़ी सेना से लड़ने की ताकत रखता हूं। अरे सारी सेना दंग रह गई कि ये एक अकेला आदमी इतना बड़ा साहस का काम करने के लिए कह रहा है, तो फिर अगर इसको इतना भरोसा है कि मैं एक अकेला भी सारी सेना से जूझ सकता हूं तो चलो अपन भी चलते, क्या फर्क पड़ेगा। और सारे लोग तैयार हो गए, सारी सेनाएं तैयार हो गई और चले चले। तो रास्ते में ऐसे रास्ते से ले गया वो सेनापति बना हुआ साधु कि जहां एक खंडहर मंदिर पड़ता था, और उसमें भगवान की एक प्रतिमा अभी भी थी। और जब उस मंदिर के सामने से सारी सेनाएं गुजरने लगी तो साधु ने कहा कि सुनो ये मंदिर बीच में पड़ गया, भगवान इसमें है ही, अपन उनसे कंफर्म कर लेते हैं, अगर जीतना कंफर्म है तब तो अपन चलें, और अगर भगवान ही कह देंगे कि तुम हारोगे तो काय को बेकार मरने के लिए चले, अपन लौट जाएंगे। सैनिकों ने कहा कि अरे वाह ये तो और बढ़िया चीज हो गई, भगवान से अपन कंफर्म कर लेते हैं कि अगर जीत है तो फिर तो चलते हैं, और अगर हारना निश्चित है तो लौट जाएंगे। और पहुंचे वहां पर, अब भगवान तो कुछ बोलने वाले नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि सामने जिसे हम अपना श्रद्धेय मानते हैं वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमारे अंतरात्मा में जो विश्वास है वो बोलता है। साधु ने कहा कि सुनो ये तो कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन ये साक्षी हैं, अपन ऐसा करते हैं कि टॉस कर लेते हैं, सिक्का उछाल लेते हैं, अगर हेड तो जीत तय है, भगवान भी बिल्कुल कंफर्म कह रहा है, साक्षी है, और अगर टेल तो फिर वापस लौट जाएंगे क्योंकि हारना निश्चित है। बात सबके समझ में आई, भगवान की साक्षी में सिक्का उछाला गया, नीचे गिरा तो हेड, तो साधु ने कहा कि जीत अपनी है ये निश्चित हो गया, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं। सारे सैनिक उत्साहित हो गए और सब चले, थोड़े से होने के बाद भी हफ्ते भर के बाद वे लौट करे, जीत करके लौटे। और जब जीत करके लौटे तो उसी रास्ते से लौटे। उस सेनापति बने हुए साधु ने कहा कि सुनो, थैंक्स तो देना चाहिए अपन को, क्योंकि भगवान की साक्षी में ही उन्हीं ने कंफर्म किया था कि अपन जीत जाएंगे, सफलता अपने हाथ में लगेगी, तो जरा थैंक्स तो दे दें उनको, धन्यवाद दे दें। सबको पसंद आई बात, गए फिर उस मंदिर के में और सबने कहा कि आपकी ही कृपा से हम सब जीत करके आए हैं, वरना तो हम हार मान चुके थे, हमारा आत्मविश्वास आपके साक्षी में चूंकि सिक्का उछाल करके हेड गिरा था, इसलिए बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया था, हम आपकी कृपा से जीत के लौटे हैं। तब उस साधु ने बहुत जोर से हंसा और कहा कि सुनो, अब मैं तो यहीं से जंगल लौट जाऊंगा वापस, तुम राजा से कह देना कि सेनापति बनाया था, जीत भी हासिल हो गई, मैं वहीं से लौट गया, और तुम सब लोग ना मेरी वजह से जीते हो ना इस भगवान की वजह से जीते हो, जानना चाहते हो कैसे जीते हो तो ये लो सिक्का देख लो, सिक्के के दोनों तरफ हेड ही हेड था, टेल तो वहां पर कहीं था ही नहीं, हारने का तो सवाल ही नहीं था, हमेशा ऐसा आत्मविश्वास कि मैं जो करूंगा अपने जीवन में मैं उसमें जीत हासिल करूंगा, हारना मेरे जीवन में, हारते वो हैं जो कि काम शुरू करने पर असफल होने पर पीछे हट जाते हैं, जीतते वे हैं जो हजार असफलताओं के बाद भी और निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमने अगर कई जिंदगियां अपने जीवन में दुख पाया है तब भी हम हारेंगे नहीं, हम थक जरूर जाएंगे लेकिन हम हारेंगे नहीं, हार कर ठहरेंगे नहीं, एक दिन अपने जीवन में अपनी उस आत्मा की अनंत शक्ति को जरूर प्रकट करेंगे और आत्म सुख को प्राप्त करेंगे तमाम दुखों के बीच भी संसार के। और अगर मेरे भीतर ये आत्मविश्वास बना रहे कि मुझे वो जो भगवत स्वरूप है, मुझे वो जो शाश्वत सुख है वो प्राप्त हो सकता है, अगर इस आत्मविश्वास अनाशक्ति और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने जीवन को जिए तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन सुख और शांति से समृद्ध हो और अच्छा बन सके। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने दृष्टिकोण को बदलें, इस संसार की आसक्तियों से थोड़ा सा हटें और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में और निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आज तो रविवार है, अपन सब एक साथ मिल बैठकर नमोकार करेंगे इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने और हम अपने जीवन में सुख और शांति हासिल कर सकें। ओ नमो अरिहंता, ओम नमो सिद्धा अरिहंतामंगलम् सिद्धामंगलम सावुमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पव्वज्जामि धम्मं शरणं पव्वज्जामि
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।